कल गया था तो उसमें जो चंद्रवीर थे तो उसकी शारीरिक हालत क्या थी वो महसूस, ऐसा उन्होंने लिखा है पुस्तक में। तो आप क्या चंद्र पर क्या एटमोस्फियर है और चंद्रवीर अभी क्या उसका शारीरिक हालत है वो कुछ आप बता सकते हैं। जी ये दूसरा क्वेश्चन है, अभी भारत में ऐसे मौलिक चिंतक ऐसे बहुत कम, मेरे ख्याल से एक दो तीन है, इसमें आपका नंबर मैं पहला लिखता हूं। लेकिन आपका चिंतन मां जनता तक पहुंचता नहीं। लोग ऐसा भी कहते हैं कि आपकी चिंता और चिंतन सिर्फ पैसे वालों के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, गरीबी घटाने के लिए आपका चिंतन में कोई खास कार्यक्रम है और वो कार्यक्रम इंप्लीमेंट करने के लिए क्या पॉलिटिक्स में प्रवेश करना जरूरी है? अगर वो जरूरी है तो आप क्यों पॉलिटिक्स में आप या आपके फॉलोअर को क्यों आपको उसको तैयार करके नहीं उसको वो क्षेत्र में भेजते? और ऐसा करने के बाद एक आश्रम और जिसे ट्रेनिंग स्कूल जैसे किया जाए पॉलिटिक्स का ट्रेनिंग स्कूल, क्योंकि आजकल भ्रष्टाचार कितना फैल रहा है। ईश्वर भाई के साथ बातचीत हुई तो भी देखो हर बात में इधर पानी लेना हो तो भ्रष्टाचार, बिल्डिंग बनाना तो एक बिल्डिंग में आप रहा उसमें भी कितना भी भ्रष्टाचार हुआ होगा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसको दूर करने के बाद आपके पास क्या है? चौथा है, गरीबों का भूख का दुख और पैसे वालों का भूख न लगने का दुख, वो दोनों में क्या तफावत है? पांचवा है, लोग आपको भगवान कहते हैं, मुझे इसमें कोई एक बार इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता, लेकिन अगर आप वो भगवान दूसरे लोग कहते हो आप अगर स्वीकार करते हैं तो ये भारत के लोगों का दुख दर्द नाश करने के वास्ते आप क्यों कोई ऐसा इलाज नहीं सोचते? और ये मुट्ठी भर लोगों के वास्ते साधना शिविर और ऐसा प्रवचन वगैरह ऐसा योजना करने से क्या दुख दर्द दूर होंगे? अगर ऐसा अगर आप भगवान के तौर पर नहीं कर सकते तो आप लोगों को कह देगा मुझे भगवान। लास्ट क्वेश्चन है, अभी मैं गणेशपुरी गया था तो वहां भूतान स्वामी का आश्रम है, वहां भी मैं अब खतरनाक तो हमारा एडिटर है उन्होंने ऐसी बात कही कि वहां तीन चार साल पहले दो तीन अमेरिकन भाई आई और उसके साथ कोई विदेशी लोग भी थे, तो कहते थे कि हम रजनीश के पास गए तो उसके पास बहुत उनके पड़ा भगवान तो हुआ, बोला हम शक्तिपात करेंगे और शक्तिपात के बहाने हमारा शरीर को एक्सप्लॉइट किया वगैरह वगैरह। अच्छा वो बात सही है, ये आपको पूछना चाहता हूं, अगर सही नहीं है तो क्या शक्तिपात हो सकता है और शक्तिपात सिर्फ शारीरिक संभोग से हो सकता है? और ये कुंडलिनी की बात है, वो लोगों को बहुत कुछ वहां मैं कोई भी ऐसे जाता हूं, मुक्तानंद जी, महेश योगी और अभी बेंगलोर में है, हैदराबाद में अभी साधना जी, वो सब लोग कुंडलिनी की बात करते हैं और लोगों को जो साधारण जन समाज है उसको कुंडलिनी में बहुत कुछ लगता है, कुछ इलम है, तो वो कुंडलिनी की बात करना ठीक है?
ये बात क्योंकि मन की क्षमता है कि समय और दूरी को पार करके अनुभव किए जा सके, लेकिन मन की ही क्षमता है, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं। तो तीन बातें समझने, एक तो शरीर की क्षमताएं वो विकसित की जाए तो एक आदमी राममूर्ति बन जाता है। फेफड़ा राममूर्ति के पास भी आपसे भिन्न नहीं, सिर्फ फेफड़े में जो छिपी हुई शक्तियां हैं उनको अगर पूरी तरह ट्रेन किया जाए तो राममूर्ति अपनी छाती पर हाथी को खड़ा कर ले। छाती आपके पास भी वही है, लेकिन छाती की कितनी संभावना है उसका अभ्यास आपके पास नहीं। ठीक ऐसे ही मन की क्षमताएं, मन की क्षमताओं का भी अभ्यास किया जाए तो आप बहुत से चमत्कारी परिणाम उपलब्ध कर ले सकते हैं। वे सब क्षमताएं आपके मन की भी हैं, लेकिन उनके भी अभ्यास की जरूरत है। तो अब तो ये वैज्ञानिक सत्य भी है कि दूरी स्थान की या समय मन के लिए बाधा नहीं। और अभी रूस में और अमेरिका में, रोमानिया में, यूगोस्लाविया में, सारे मुल्कों में वैज्ञानिक सोच चलती है। और वैज्ञानिक सोच के लिए बड़े से बड़ा कारण यही रहा है कि जैसे ही हम अंतरिक्ष में यात्री को भेजेंगे तो सिर्फ यंत्रों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि यंत्र किसी भी क्षण खराब हो सकते हैं। अगर रेडियो यंत्र खराब हो जाता है तो अंतरिक्ष यात्रियों की हमें फिर कोई भी खबर कभी भी नहीं मिलेगी। वे जीवित हैं, मर गए, कहां गए, क्या हुआ, अनंत में खो जाएंगे। तो एक अल्टरनेट कम्युनिकेशन की जरूरत है कि किसी भी क्षण अगर रेडियो यंत्र काम न करे तो हमारे पास कुछ और व्यवस्था होनी चाहिए जो कम से कम इतनी खबर दे सके कि रेडियो यंत्र खराब हो गए, इतनी खबर दे सके कि कहां है यात्री, क्या घटित हो रहा है। इसलिए रूस और अमरीका दोनों के वैज्ञानिक मन की टेलीपैथिक क्षमता पर बहुत खोजने लगे। पहली दफे उनकी उत्सुकता मन की टेलीपैथी के बाबत बढ़ी क्योंकि अब वही एक अल्टरनेट इंतजाम हो सकता है, क्योंकि दूसरा कोई भी इंतजाम यंत्र का ही होगा और वो सभी रेडियो यंत्र पर निर्भर होगा। अगर रेडियो यंत्र खराब हो जाता है तो खबर संचार की फिर कोई व्यवस्था नहीं। तो क्या हम मन से खबर भेज सकते हैं बिना किसी यंत्र के, इस चिंता में वे लीन। और जो परिणाम आए हैं वो बहुत विधायक, खबरें भेजी जा सकती हैं। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि रेडियो यंत्र से ज्यादा सुनिश्चित खबरें भेजी जा सकती हैं और रेडियो यंत्र की बजाय ज्यादा निर्भर रहा जा सकता है। लेकिन तब व्यक्तियों को ट्रेन करने की बात है, सब व्यक्तियों को ट्रेन करने की बात। अक्सर तो ऐसा होता है कि कुछ लोग संयोगिक रूप से विकसित हो जाते हैं, इसे जीन मिक्सन, संयोगिक विकास है। अचानक किसी क्षण में कोई जागरूक हो जाता है, उसके पास एक क्षमता है, लेकिन इस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि विज्ञान तो निर्भर तब हो सकता है जब ये प्रशिक्षित हो सके। तो रूस ने इस पर प्रशिक्षण के काम किए और ऐसे लोगों को प्रशिक्षित किया जिनको जीवन में कभी ख्याल ही नहीं था उनके पास ऐसी क्षमता हो सकती। और अब दूर संचार भेजा जा सकता है और रेडियो यंत्र अगर 90% परिणाम देता है तो 95% परिणाम टेलीपैथी दे देता है। तो डीन निक्सन जो भी कर रही है वो बिल्कुल संभव है, उसमें कोई अड़चन नहीं है। और इस तरह के इसमें पृथ्वी पर कम से कम 50 लोग जो बहुत तरह की मन की संभावनाओं से भरे हुए, जैसे अमेरिका में ही और व्यक्ति थे, एक व्यक्ति है जो न केवल मन से संचारित संबंधित हो जाता है बल्कि आंखों में चित्र भी उपलब्ध कर लेता है और उसकी आंखों के फोटोग्राफ भी लिए गए थे। अगर वो अमेरिका में बैठ के ताजमहल के बाबत चिंतन करता है तो ताजमहल का चित्र उसकी आंख में, और वो चित्र आंख में नहीं आ जाता, वो उसको अनुभव होता है, उसका फोटोग्राफिक चित्र भी लिया जा सकता है। ये भी मन की दूसरी क्षमता है अगर मन रेडियो की तरह काम कर सकता है तो टीवी की तरह भी काम कर सकता है। लेकिन मेरा कोई संबंध न तो शरीर की शक्तियों से है और न मन से, और मैं मानता हूं कि वे दोनों ही भौतिक हैं और उनका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। चमत्कार घटित हो सकते हैं, लेकिन वे चमत्कार इसीलिए मालूम पड़ते हैं, उनके भीतरी नियमों का हमें कोई पता नहीं। अन्यथा इस जगत में कोई भी चमत्कार नहीं और न चमत्कार हो सकता है। चमत्कार का एक ही अर्थ है कि उसके भीतर काम करने वाले नियम अभी तक ज्ञान के क्षेत्र में प्रकट नहीं हो सके। चमत्कार का अर्थ है हमारा अज्ञान, और चमत्कार का कोई भी अर्थ नहीं। जिस दिन भी नियम व्यवस्थित ज्ञात हो जाते हैं उस दिन चमत्कार लीन हो जाता है। और मैं मानता हूं कि रूस और अमेरिका दोनों ही, और विशेषकर रूस, क्योंकि रूस की तो कोई धारणा ही नहीं है कि भीतर कोई चमत्कारी संभावना है, सभी कुछ नियमगत और प्राकृतिक है। तो बहुत शीघ्र इन सारी चीजों के नियम ज्ञात हो जाएंगे, और मेरी समझ ये इस सदी के पूरे होते होते जैसे हम और चीजों के लिए प्रशिक्षण देते हैं, ठीक हम टेलीपैथी के लिए प्रशिक्षण दे सकेंगे, देना ही पड़ेगा, क्योंकि अंतरिक्ष की यात्रा के बाद साधारण आदमी के पास जो मन है उससे काम नहीं चलेगा। जब हम अनंत के विस्तार में प्रवेश कर रहे हैं तो हमारे पास अनंत में प्रवेश करने योग्य सक्षम मन भी चाहिए, सिर्फ यंत्रों से काम नहीं होगा। तो मेरे लिए ये और भी मूल्यवान है कि चांद पर आदमी जा रहा है, मंगल पर जाएगा। चांद और मंगल का मेरे लिए मूल्य नहीं, मेरे लिए मूल्य है कि चांद और मंगल पर जाने के लिए उसे चेतना के भी नए आयामों में प्रवेश करना पड़ेगा। जैसे ही हम तकनीकी दृष्टि से एक चीज में आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हमें चेतना में भी उतने ही आगे बढ़ना पड़ता है। अन्यथा तकनीक में हम ज्यादा आगे नहीं जा सकते। जैसे एटम बॉम्ब है, मैं मानता हूं कि बहुत ही सुखद खोज है, क्योंकि एटम बम के बाद आदमी को अब पुराने ढंग की बेवकूफियां छोड़नी पड़ेंगी या बचेगा नहीं। एटम बम के साथ ही आपको एक जागतिक चेतना विकसित करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय चेतना अब काम नहीं कर सकती, क्योंकि राष्ट्रीय चेतना जिन साधनों से काम करती थी वे साधन दो कौड़ी के हो गए, और जो साधन अब आपके हाथ में है उनके लिए पूरी पृथ्वी उपयोगी है। अब आप छोटे मन से काम नहीं कर सकते, यह आदमी को मिटना पड़ेगा, और आदमी मिटने को कभी राजी नहीं, इसलिए बदलने को सदा राजी हो जाता है। लेकिन मुझे प्रयोजन नहीं, मेरी उत्सुकता भी नहीं, मुझे कोई अर्थ नहीं है कि चांद पर क्या हो रहा है कि कहां क्या हो रहा है। मुझे एक ही प्रयोजन और एक ही उत्सुकता है कि आदमी के अंतर कम में क्या हो रहा है। मानता नहीं कि चिंतन जनता तक पहुंच सकता है। जितना गहन चिंतन होगा उतने थोड़े लोगों तक पहुंचेगा, जितना साधारण चिंतन होगा उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि पहुंचने में चिंतन ही मूल्यवान नहीं होता, वही अर्थवान नहीं होता, जिस तक पहुंचाना है वो भी अर्थवान है। तो अगर चिंतन की बहुत गहराइयां हो तो आम जनता तक उसे नहीं पहुंचाया जाता। आम जनता का मतलब ही यही है कि जो बहुत सतह पर जी रही है और जिससे गहराई तक के सवाल नहीं पहुंचाए जाते। लेकिन मैं मानता भी नहीं हूं कि पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि इस जगत का जो जिसे समझ लें, आप चिंतन करते हैं तो आपके मस्तिष्क में होता है, पैरों तक नहीं पहुंचता, पहुंचाने की जरूरत भी नहीं। अगर मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है तो पैर उसका अनुगमन करते हैं। जिसको हम आम जनता कहते हैं वो कभी भी किसी चीज में अग्रणी नहीं होती, हो भी नहीं सकती। समाज के पास भी एक मस्तिष्क है, वही अग्रणी होता है, फिर समाज पीछे चलता है। जिन क्रांतियों को हम जनता की क्रांतियां कहते हैं, वे भी व्यक्तियों से ही अनुप्राणित होते हैं। कोई मार्क्स का चिंतन जनता का चिंतन नहीं है। मार्क्स तो बैठ के ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में 24 घंटे मेहनत में लगा हुआ है, और मार्क्स जनता तक पहुंचा भी नहीं सका अपने जीवन में, तो कुछ भी पहुंचा भी नहीं सकता। लेकिन इंटेलिजेंसिया तक एक समझदार वर्ग को उसने पकड़ लिया, वहां तक बात पहुंच गई, वो मस्तिष्क है। एक दफा वो अनुप्राणित होता है, चल पड़ता है, तो जनता पीछे चलती है। मेरे लिए जनता का बहुत मूल्य नहीं है, मूल्य नहीं मेरे मन में। मेरे लिए मूल्य ही समाज के भीतर जो बुद्धि है उसका मूल्य है। अगर उसे अनुप्राणित किया जा सकता है तो जनता पीछे चल पड़ती है। जनता को सीधा अनुप्राणित करने का कोई भी उपाय नहीं, एक बात पूरी बात मेरी। दूसरी बात ये भी थोड़ी दूर तक सच है कि धनिक वर्ग मेरे निकट इकट्ठा हो जाए, इसे भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। जीवन बहुत संयुक्त है, धन एकांगी घटना नहीं है। जहां धन है वहां शिक्षा भी ज्यादा होगी, जहां धन है वहां समझ भी ज्यादा होगी। तुलनात्मक कह रहा हूं, जहां धन है वहां समझ भी ज्यादा होगी, शिक्षा भी ज्यादा होगी। जहां धन है वहां सुविधा भी ज्यादा होगी, जहां धन है वहां समझने के लिए आकांक्षा भी ज्यादा होगी। उसका कारण है क्योंकि समझ को मैं लग्जरी मानता हूं। समझ गरीब आदमी का काम नहीं, ही कैन नॉट अफोर्ड इट। समझ जो है जीवन की सबसे अधिक विलासपूर्ण अवस्था है। तो समझ का जो फूल है वो विलास में खिलता है। बुद्ध हो या महावीर, ये सब विलास के फूल। अगर एथेंस में प्लेटो और सॉक्रेटिस का रस तो पैदा हुए तो वो उस वक्त पैदा हुए जब एथेंस विलास के शिखर पर था। अगर भारत ने भी दुनिया को श्रेष्ठ चिंतन दिया तो वो उसी समय दिया जब भारत दरिद्र नहीं था और उसके स्वर्ण शिखर पर उसकी ऊंचाई थी। आज तक दुनिया में कोई दरिद्र समाज कोई गहन चिंतन नहीं दे सकता, दे नहीं सकता। समृद्धि जो है, समृद्धि का मतलब ही इतना है कि अब शरीर की आम जरूरतों से छुटकारा हुआ, अब आपकी चेतना किन्हीं भिन्न आयामों में प्रवेश करने के लिए छुट्टी है। विलास का मतलब ही इतना है कि अब आप कला में, संगीत में, साहित्य में, धर्म में, ध्यान में रस ले सकते हैं। गरीब आदमी का मतलब क्या है? गरीब आदमी का मतलब इतना है, यदि उसकी शरीर की जरूरतें भी पूरा करने की सुविधा उसके पास नहीं, जिसके पास शरीर की जरूरतें सुविधा पूरा करने की नहीं है उसके पास मन की जरूरतें पैदा भी नहीं होती, और जिसके पास मन की जरूरतें पूरी करने की सुविधा नहीं उसके पास आत्मा की जरूरतें पैदा नहीं होती। ये जरूरतें क्रमिक हैं। सबसे पहले जो जरूरी है वो शरीर है, जो शरीर को सुविधा जुटा पाता है वो मन के आयाम में अतृप्त होने लगता है। जब मन की भी सुविधा जुट जाती है तो आदमी आत्मा के आयाम में अतृप्त होता है। शरीर की सुविधा न जुटती हो तो आत्मा की बातचीत असंभव या झूठी है या बहाना है और उसमें बहुत गहराई नहीं हो सकती। तो मेरे मन में गरीब का मतलब ही ये है कि जो गहन चिंतन में प्रवेश नहीं कर सकता। ये मैं तुलनात्मक कह रहा हूं, अपवाद व्यक्ति हो सकते हैं, उनका मैं हिसाब नहीं रख रहा हूं। विलास के साथ ही आदमी को सुविधा मिलती है कि अब वो कुछ और भी कर सकता है, चित्र प्रिंट करे, वीणा बजाए, ध्यान करे। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें फिजूल हैं। अगर एक पौधा हम लगाते हैं तो पहले तो पौधे में जड़ें होती हैं, फूल तो आखिर में आता है, और फूल तभी आता है जब पौधे के पास सुपरफ्लूअस एनर्जी हो, नहीं तो फूल नहीं आएगा। अगर पौधा अपने जीवन को ही बचाने में लगा हुआ है तो फूल नहीं आएगा। फूल तो आएगा तभी जब जीवन के बचाव के बाद शक्ति बचती है। तो धर्म मेरे लिए फूल है। तो मेरी तो मान्यता ही यही है कि धार्मिक समाज वो ही तप सकता है जब वो समृद्ध हो। गरीब समाज धार्मिक नहीं हो सकता। और गरीब समाज के लिए मेरी स्वीकृति है जो मार्क्स ठीक कहता है कि धर्म अफीम का नशा है। गरीब समाज के लिए धर्म अफीम का नशा है, मार्क्स ठीक कहता है। मेरे हिसाब से किसी और कारण ये ठीक वैसे ही नशा है जैसे भूखा आदमी वीणा बजाने में अपने को बुला रहा हो। बुला तो नहीं सकता, मिटा तो नहीं सकता, थोड़ी बहुत देर के लिए गमगीन हो सकता है, लीन हो सकता है, भूख मिटेगी नहीं और बढ़ेगी। एक मजे की बात है कि जब भी कोई समाज गरीब होता है तब भी वो धर्म में उत्सुक होता है, लेकिन उसकी उत्सुकता समझ नहीं जाए। अब मैं अनुभव से कहता हूँ, गरीब आदमी मेरे पास आता है वो कहता मन में बड़ी अशांति है, लेकिन वो गलत शब्दों का प्रयोग करता है। जब मैं उससे पूछता हूँ क्या अशांति, तो वो कहता लड़की की शादी नहीं हुई। वो कहता है कि लड़के को नौकरी नहीं मिली। वो कहता है पत्नी बीमार, इनका मन से कोई संबंध नहीं। ये सब शरीर के तल की अशांति है जिनको वो मन की अशांति कह रहा है। एक अमीर आदमी मेरे पास आता है, वो कहता है मन में बड़ी अशांति है, उसकी अशांति बिल्कुल और है। लड़के की शादी हो गई, लड़का नौकरी पर है, सब कमाई है, सब ठीक है, सब ठीक है। जहां गरीब आदमी का सब गलत है वहां उसका सब ठीक है। और फिर उसको अनुभव हो रहा है कुछ भी ठीक नहीं। ये बिल्कुल दूसरे तल की अशांति है, ये मानसिक है। इसलिए ये बड़े मजे की बात है, गरीब आदमी और गरीब समाज में मानसिक बीमारियां नहीं होती, हो नहीं सकती। अमीर समाज में मानसिक बीमारियां शुरू होती हैं। गरीब समाज की बीमारियां शारीरिक होती हैं, अमीर समाज की बीमारियां मानसिक होती हैं। और जब अमीरी आखिरी दशा में पहुंचती है तब आत्मिक बीमारियां शुरू होती हैं। और इलाज तो तभी किया जा सकता है जब बीमारी हो। मेरी तकलीफ यह है कि आपका मन बीमार नहीं, मैं आपको नौकरी नहीं दिला सकता, मैं आपकी लड़की की शादी नहीं करवा सकता, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं आपके मन को शांत होने का उपाय जरूर बता सकता हूं, लेकिन मन अभी आपका अशांत नहीं। और जब आप कहते हैं कि मेरा मन अशांत है तब आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आपको भी पता ही नहीं कि मन की अशांति क्या है। मन की अशांति शुरू ही तब होती है जब शरीर की सब अशांति समाप्त हो जाए, नहीं तो मन की अशांति शुरू नहीं होती। तो मेरी तकलीफ यह है कि गरीब आदमी मेरे पास आता है तो मैं अनुभव करता हूं कि उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कर नहीं सकने का कारण है कि वो जो कह रहा है वो उसकी अशांति नहीं होती, जो मैं कर सकता हूं उससे उसका कोई तालमेल नहीं। मैं एक अमीर समाज के पक्ष में हूं, मैं गरीब समाज के बिल्कुल विरोध में। और जब मैं कहता हूं मैं गरीब समाज के विरोध में, तो मेरा विरोध समाजवादी का विरोध नहीं। समाजवादी का विरोध यह है कि हम अमीर को विसर्जित कर दें, गरीब को बांट दें। मैं मानता हूं ये समाज को और बड़ी गरीबी ला देगा। मैं अमीर समाज के पक्ष में हूं, ठीक पूंजीवादी अर्थ में। मैं चाहता हूं गरीब गरीब न रह जाए, अमीर हो। और इसलिए चाहता हूं कि ताकि एक दिन वो भी मानसिक अशांति का मजा ले सके, क्योंकि जो मानसिक अशांति का मजा लेगा वही मानसिक शांति का मजा ले सके। और इसलिए चाहता हूं कि एक दिन वो भी आत्मिक रूप से पीड़ित हो सके, क्योंकि जो आत्मिक रूप से पीड़ित होगा वही आत्म साक्षात्कार की तरफ जा सकता है। पीड़ा शारीरिक है तो मेरी तकलीफ क्या है? मेरी तकलीफ यह है कि पीड़ा शारीरिक है, और उस शारीरिक पीड़ा को शरीर के तल पर मिटाया जाना चाहिए। उसको मन के तल पर मिटाने का कोई मतलब नहीं होता। उस आदमी को टेक्नोलॉजी की जरूरत है, धन की जरूरत है, मकान की जरूरत है। और मेरा मानना यह है कि अब तक वो गरीब इसलिए बना हुआ है कि इस जरूरत को वो ठीक से नहीं समझ रहा है, वो इसको आध्यात्मिक और मानसिक बातों में समय खराब कर रहा है। गरीब आदमियों को धर्म की बात करना बिल्कुल अफीम देना है, उससे टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए। उसको बताया जाना चाहिए वो धन कैसे ज्यादा पैदा करे। अब रह गया सवाल ये कि क्या मैं गरीब आदमी को बताऊं कि वो धन कैसे ज्यादा पैदा करे, ये सवाल, क्योंकि मन कैसे उसका शांत हो ये उसका भी सवाल नहीं, इसके जवाब का कोई प्रश्न ही उसका। क्या मैं उसको बताऊं कि वो धन कैसे ज्यादा पैदा करे, क्या मैं उसको बताऊं कि वो कैसे समृद्ध हो, क्या मैं उसको बताऊं कि वो कैसे दुकान चलाए, इसमें भी मेरी कठिनाई है। क्योंकि मेरा अनुभव ये है कि आदमी जैसा है इसको ज्यादा धन दे दो, इसको बड़ा मकान दे दो, तो बड़े मजे की घटना घटती है कि इसके पुराने दुख तो मिट जाते हैं, सिर्फ इसके नए दुख शुरू होते हैं। दुख नहीं मिटते, सिर्फ नए तल पर दुख शुरू होता है। अगर मनुष्य जाति का हम पूरा इतिहास देखें तो हम सदा इस आशा में रहे हैं कि ये चीज हल हो जाए तो सब हल हो जाए, फिर वो हल हो जाती और कुछ हल नहीं होता। हजारों बार ऐसे मौके आए जब हमें लगा कि ये हल हो जाए तो सब हल हो जाए। जैसे कभी भारत गुलाम था तो सारे मुल्क के समझदार आदमी को लगता था कि भारत स्वतंत्र हो जाए तो सब हल हो जाए, जैसे सब हल स्वतंत्रता में रखा हुआ था, फिर हम स्वतंत्र हो गए, कुछ हल नहीं हुआ। वो हम बात भी भूल गए कि हम सोचते थे सब हल हो जाएगा, नए सवाल खड़े हो गए। अमरीका पहली दफा ठीक से समृद्ध हो गया तो अमेरिका के 300 वर्ष के 250 वर्ष के जितने विचारशील लोग थे सबकी चेष्टा का फल कि अमेरिका समृद्ध हो गया, और उन सबने जो सोचा था कि समृद्धि से मिलेगा वो कुछ भी नहीं मिला, और उनमें से एक ने भी नहीं सोचा था जो मिला है उनमें से एक ने नहीं सोचा था कि ये होगा। न जेफरसन ने सोचा, न लिंकन ने सोचा, न इमर्सन ने सोचा कि हिप्पी पैदा होंगे। 300 वर्ष के अमेरिका के चिंतकों ने सोचा कि सबको सार्वजनिक शिक्षा होनी चाहिए, सब शिक्षित हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाए, और सब शिक्षित हो गए तब पता चला कि ठीक कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ये शिक्षित आदमी नए उपद्रव पैदा करता जो अशिक्षित ने कभी भी पैदा नहीं किया। आज इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्वीडन में, अमरीका में हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, ईसाई मुसलमान का झगड़ा नहीं है, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक का झगड़ा नहीं, झगड़े पुराने पड़ गए। सारे लोग सोचते थे कि जिस दिन धर्मों में झगड़े नहीं रहेंगे उस दिन बड़ी शांति हो जाएगी, लेकिन बड़े बेहूदे और नए झगड़े खड़े हो गए। अभी मेरे पास दो सन्यासी आए इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड में दो ग्रुप हैं, लंबे बाल वाले युवकों का ग्रुप और सिर घुटे बाल वाले, और झगड़े की कुल जमा फिलोसफी इतनी है कि तुम्हारा सिर घुटा नहीं। ये जो सिर घुटे वाले युवक थे ये लंबे बाल वालों को मारेंगे, बाल काटेंगे, चोट करेंगे, उनके सामान मिटा देंगे, हत्याएं हो जाएंगी। ये लड़कों का जो सन्यासी आश्रम था उन लोगों ने इसको लूट लिया। बड़ी हैरानी, उन पर मुकदमे चलते हैं अदालतों में, तो अदालतों में उनके जो वक्तव्य देखने लायक, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमें हिंसा में आनंद आता है, प्रयोजन नहीं। वो कहते हैं कि काम वासना हमारे लिए बोर्डम हो गई, क्योंकि सब स्वतंत्रता हो गई, स्त्री उपलब्ध है, अब सिर्फ एक हिंसा रही जिसमें हमें थोड़ी सी थ्रिल, हम किसी की छाती में जब छुरा भोंकते हैं तो क्षण भर को हमें लगता है कि आनंदित हो। इनके बाप दादा ने 500 साल में कभी नहीं सोचा था कि जिस दिन हम इनको सारी सुविधा जुटा देंगे और जिस दिन धन होगा और जिस दिन शिक्षा होगी उस दिन ये लड़के हिंसा में ऐसा रख लेंगे। हम सबको ख्याल है कि आदमी हिंसा इसलिए करता है कि उसके पास खाने को नहीं है, गलती है आप। हमारा ख्याल है कि आदमी इसलिए लड़ता है कि उसके पास ठीक सुंदर स्त्री नहीं, गलती है आप। आपका भी उस समाज का पता नहीं जिसमें सब सुंदर स्त्री उपलब्ध है और धन उपलब्ध है, सब सुविधा उपलब्ध है। तब आदमी हिंसा बेकारण कर सकता है, इसका हमें ख्याल भी नहीं। तो तो जैसा मैं देखता हूं, मेरा मानना ऐसा है कि जैसा समाज है समाज सदा दुखी रहेगा। एक मेरी धारणा है, जैसा समाज है सदा दुखी रहेगा। दुख के तल बदलेंगे, दुख के आयाम बदलेंगे, ढंग बदलेंगे, समाज सदा दुखी रहेगा। समाज कभी भी सुखी नहीं हो सकता, व्यक्ति सुखी हो सकता है। और व्यक्ति के सुख का मतलब उसको आत्म रूपांतरण करना पड़ेगा तो वो सुखी हो सकता है। अगर दुख के कारण बाहर है, जैसा कि 200 वर्ष का चिंतन है सारी दुनिया का कि दुख के कारण बाहर, तो दुख के कारण जहां मिट गए वहां सुख आ जाना चाहिए, तो वहां सुख नहीं आता। मेरी अपनी दृष्टि है कि दुख के कारण बाहर नहीं है, और ये धर्म की सदा की दृष्टि है। लेकिन अब मैं मानता हूं कि इसके लिए वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं, अब तक नहीं थे। बुद्ध ने भी कहा है कि सुख बाहर के कारणों पर निर्भर नहीं है, लेकिन बुद्ध इसके लिए प्रमाण नहीं दे सकते। लेकिन अब प्रमाण उपलब्ध है, क्योंकि जिन समाजों में बाहर के सब कारण मिटा दिए गए हैं वहां दुख घना हो गया, कम नहीं हुआ। तो मेरे लिए मूल्यवान व्यक्ति है समाज में, यही मैं राजनीतिक और धार्मिक व्यक्ति की दृष्टि का अंतर मानता हूं। मेरे लिए तुम मूल्यवान हो समाज में, क्योंकि तुम भीतर जा सकते हो, समाज भीतर नहीं जा सकते। और अगर मैं कहता हूं कि समाज की गरीबी मिटे तब मैं तुम्हारे भीतर जाने की यात्रा शुरू करूंगा, तो तुम भी मिट जाओगे, मैं भी मिट जाऊंगा, और समाज तो चलता रहेगा। तो समाज के नाम पर पोस्टपोनमेंट करने के लिए नाराजी नहीं। तो मेरा मानना है जो भी इस स्थिति में है आज कि अंतर यात्रा पर जा सकें वो जाएं, जो नहीं है इस स्थिति में वो अपनी बहिर्यात्रा यात्रा पर लगे रहे। आज नहीं कल जब उनको सुविधा मिल जाएगी तब उनको भी अंतर यात्रा पर जाना पड़ेगा। उनमें जो बुद्धिमान है वो आज भी अंतर यात्रा पर जा सकते हैं, क्योंकि बुद्धि का मतलब ही इतना है कि वो भविष्य को भी देख पा सकती है। इसलिए गरीब आदमी भी अगर बुद्धिमान है तो अंतर यात्रा पर जा सकता है, अमीर आदमी बुद्धू भी है तो भी अंतर यात्रा पर जा सकता है, क्योंकि उसकी सिचुएशन उसको धक्का देती है। गरीब आदमी को सिचुएशन तो धक्का नहीं देती, उसका चिंतन ही धक्का दे सकता है। और मेरी उत्सुकता इसमें बिल्कुल नहीं, सामाजिक रूपांतरण दुखों को मिटा देगा ये मिथ्या पुराण कल्पना है, ये बात समाप्त हो गई, ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि हमने सब करके देख लिया। किसी को लगता था कि शिक्षा नहीं है इसलिए दुख है, शिक्षा हो गई और दुख बढ़ गया। शिक्षित समाज ज्यादा दुखी है अशिक्षित समाज की बजाय, और अशिक्षित समाज अगर दुखी है तो सिर्फ इसीलिए कि शिक्षित लोग सुख उठा रहे होंगे। बड़ा मजे का मामला है, बड़ा मजे का मामला। मेरी उत्सुकता नहीं कि सब शिक्षित हों, मेरी उत्सुकता ये कि शिक्षित हों या अशिक्षित हों, भीतर जाने की प्रक्रिया उनके ख्याल में आए। ये मैं जानता हूं कि शिक्षित को जल्दी आ सकती है, इसलिए शिक्षित हो जाए तो अच्छा, लेकिन ये मेरी धारणा नहीं कि शिक्षित होने से उनका दुख मिटने वाला है, ना उससे नहीं मिटने वाला। इसलिए मैं सीधा उत्सुक नहीं, मैं सीधा उत्सुक नहीं। फिर मेरी अपनी समझ ये भी है कि चाहे जीवन के मूल्यों का सवाल हो, चाहे कोई और सवाल हो, एक छोटा सा वर्ग नेतृत्व करता है। मैं लोकतांत्रिक नहीं, डेमोक्रेटिक मेरी दृष्टि में, और मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी 100 साल से ज्यादा दुनिया में नहीं चल सकती, वो तभी तक चल सकती जब तक पूरी नहीं आ गई। जिस दिन पूरी आ जाएगी उस दिन उसकी मूलता हमें दिखाई पड़ जाएगी। कठिनाई यह है कि जब तक कोई चीज पूरी ना आए तब तक उसकी मूलता हमें दिखाई भी नहीं पड़ सकती। वो पूरी आए तो जिस चीज से हम जो मौजूद होती है उससे हम लड़ते हैं क्योंकि उसकी बुराई दिखाई पड़ती है, जो मौजूद नहीं है उसके लिए हम लड़ते हैं क्योंकि उसकी भलाई दिखाई पड़ती है। जब वो पूरी तरह आ जाए, जैसे आज सार्वभौम शिक्षा अमेरिका में मूर्छापूर्ण हो गई और बुद्धिमान लड़के यूनिवर्सिटी छोड़ के भाग रहे हैं। जिनका भी आईक्यू थोड़ा ज्यादा है वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं और जिनका आईक्यू छोटा है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। जिनके पास बुद्धि कम है वो लगे हैं पढ़ने में, जिनके पास बुद्धि वो यूनिवर्सिटी के बाहर आ रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी से कुछ भी नहीं मिला, तुम्हारी शिक्षा से कुछ नहीं मिला। ये धोखा था, लेकिन ये धोखा तब तक चल सकता था जब तक शिक्षा पूरी नहीं थी। अब वो पूरी हो गई, अब मुसीबत पता चली थी तो धोखा था, तो कुछ मिलने वाला नहीं। अगर आज लड़के को उसका बाप कह रहा है कि तुम विश्वविद्यालय में पढ़े तो वो लड़का पूछ रहा तुम पढ़े थे तुम्हें क्या मिला, तुम्हें कुछ मिला हो तो हमें कहो। अब बाप ये नहीं कह सकता कि नौकरी मिली, क्योंकि नौकरी तो आज अमरीका में बगैर पढ़े लिखे को भी मिलती। ये गरीब बाप कह सकता है कि नौकरी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा। आज अमरीकन बाप ये भी नहीं कह सकता कि कपड़ा मिलेगा, कि मकान मिलेगा, कि नौकरी मिलेगी। ये तो बिना इसके भी मिल सकता है, ये कोई सवाल ना रहा। और लड़का ये कह सकता है कि तुमको कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, कार मिल गई, सब मिल गया, लेकिन जिंदगी कहां है तुम्हारे पास? तुम कुमला गए सबको पाने में, सड़ गए, न तुमने कभी प्रेम किया, न तुमने कभी गीत गाया, न तुम नाचे। तो कपड़े तो मिल जाएंगे ठीक, इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन हम नाचना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। आज अमरीकी लड़का अपने बाप से कह रहा है कि तुम्हारी सारी शिक्षा ने सिवाय युद्धों के और क्या पैदा किया। हम लड़ना नहीं चाहते, हम प्रेम करना चाहते। आज अमरीकन हिस्ट्री बोर्ड लगाया है लव नॉट वार, और उसका कहना ठीक है। वो कहता है कि जब तक कोई समाज प्रेम करने में समर्थ नहीं होगा तब तक वो लड़ेगा, वो बच नहीं सकता। इसलिए सभी युद्धखोर प्रेम के खिलाफ होते हैं। अगर सेक्स सप्रेस किया जाए तो ही तुमको लड़वाया जा सकता, नहीं तो लड़वाया नहीं जा। इसलिए हमेशा यह होता है कि जब भी कोई समाज मुक्त हो जाता है सेक्स के मामले में तो फिर जीत नहीं पाता, हार जाता है। आज अगर अमेरिका वियतनाम में नहीं जीत सकता तो उसका कारण है कि जिस सैनिक से वो लड़ रहा है वो भूखा है, क्षुधा तो है, काम वासना से अतृप्त है। और अमरीका लड़का न भूखा है, न क्षुधा कर है, न काम वासना से अतृप्त है, लड़ने का उसे कोई कारण नहीं। उसको मैं जबरदस्ती लड़ा रहा है, मैं उसको कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं पूछना आती उसको भी लड़ना किस लिए। इसलिए मजे की बात है कि जब भी कोई श्रेष्ठ सभ्यता किसी निकृष्ट सभ्यता से लड़ेगी तो निकृष्ट जीत जाएगी और श्रेष्ठ हारेगी। भारत का 2000 साल का अनुभव, हम उन सभ्यताओं से हारे जिनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन भूख थी, वासना थी, काम अतृप्त था। तो मुगलों ने, तुर्कों ने, हूणों ने हमें रौन डाला, हमारे पास लड़ने का कोई कारण नहीं था। जब भी आपके पास सब होता तब आप चाहते हैं झंझट ना हो, और जब कुछ नहीं होता तब आप चाहते हैं झंझट हो जाए, क्योंकि झंझट से शायद कुछ निकल गया है। और सदा निकलता है, सदा निकलता है, क्योंकि खोने को कुछ होता नहीं। झंझट से कुछ ना कुछ मिलेगा, ही नहीं मिलेगा तो कुछ खोने वाला नहीं। तो ये जो तकलीफ है, अब अमरीका शिक्षित हुआ तब पता चला कि ये शिक्षा तो टूट जाएगी, चल नहीं सकती। अमरीका धनी हुआ तो पता चला कि धन बिल्कुल बेकार। अमरीका टेक्नोलॉजिकली आज सशक्त हो गया तो आज अमरीका को लग रहा है कि हमें मशीन से छुटकारा चाहिए, मशीन जान दिए ले रहे हैं, क्योंकि मशीन धीरे धीरे आदमी पर कब्जा किए जा रहे हैं। हमको दिखाई नहीं पड़ता, पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम आदि हो जाते हैं। जब आप चौरसे से गुजरते हैं और लाइट आपको रास्ता नहीं देता, आप चुपचाप खड़े रहते हैं, आपको ख्याल नहीं कि मशीन आपको आज्ञा कर रहे हैं। मशीन आज्ञा कर रही और आप रुके हुए खड़े, और कहीं ख्याल नहीं आ रहा कि मशीन की गुलामी। अमरीका को पता चला क्योंकि ये लाइट का मामला नहीं रहा, 24 घंटे सब तरफ से मशीन गुलाम किए हुए। कभी लड़कों ने बर्कली यूनिवर्सिटी में खड़े होकर एक कीमती रॉल्स रॉयस गाड़ी जलाई, नई खरी सिंपल सिंबल की तरह, या मशीन से छुटकारा था। कोई चीज जब पूरे पैमाने पर आती तब पता चलता है। न्यूयॉर्क में 1920 में बग्गी की घोड़ा गाड़ी की रफ्तार 11.5 मील और अब कार की रफ्तार 7.5 मील प्रति घंटा। और ये अगर 5 साल चला तो कार की रफ्तार आदमी की पैदल रफ्तार से कम हो जाएगी। लेकिन ये तब तक आपको पता नहीं चल सकता जब तक कारें पूरी तरह सबको उपलब्ध न हो जाए। हमारी तकलीफ ये है कि कोई भी चीज जब तक पूरी ना हो जाए लोकतंत्र मरेगा। 100 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। गरीब मुल्कों में जिंदा रह जाए अमीर मुल्कों में खत्म हो गया। खत्म होगा उसका कारण है क्योंकि अब साफ समझना आना शुरू हुआ कि जितना तुम नीचे के आदमी से सलाह लेते हो उतनी नीची सलाह मिलती है मिलेगी। उसमें कोई और उपाय नहीं है। और जब नीचे का आदमी चुनाव करने लगता है तो ठीक है जिनसे उसका तालमेल बैठता उनको चुनता है। इसलिए लोकतंत्र निम्नतम राजनीतिक को ऊपर पहुंचाने में समर्थ होते जाते हैं। जो जितना निम्नतम है उतने जल्दी ऊपर पहुंच सकता है। अब मेरी दृष्टि यह है कि सवाल ये नहीं है कि गरीब को कैसे प्रशिक्षित किया जाए श्रेष्ठ मूल्यों के लिए। मेरे लिए सवाल ये है कि जो श्रेष्ठ है उसको कैसे प्रशिक्षित किया जाए तो वो भीड़ से जगत को बचाए। मेरे लिए जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल और। जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं वो डेमोक्रेसी नहीं है मॉबोक्रेसी। वो लोकतंत्र नहीं है भीड़ तंत्र। और भीड़ मजबूत होती चली जा रही है। सब तरफ से गर्दन कसती जा रही है। और मजे की बात यह है कि इस गर्दन कसने में भीड़ अपना भी नुकसान करेगी मगर उसको पता भी नहीं चल सकता। उसको पता भी नहीं चल सकता। आज भीड़ कहती है कि तुम्हारे पास धन ज्यादा नहीं होना चाहिए। कल भीड़ कहेगी कि कुछ लोगों के पास बुद्धि ज्यादा क्यों हो। क्योंकि धन से क्या खिलाफत है। धन से यह खिलाफत है कि जिसके पास धन है वो मालकियत करता है। क्या फर्क पड़ने वाला जिसके पास बुद्धि है वो मालकियत करेगा। मालकियत से कठिनाई है। आज नहीं कल भीड़ कहेगी कि बुद्धि ज्यादा क्यों होनी चाहिए। बुद्धि का वितरण कर दो। अगर कोई बच्चा 100 IQ से ज्यादा है तो उसको इंजेक्शन देके नीचे लाओ क्योंकि वो तल पर होना चाहिए। किसी के पास ज्यादा बुद्धि होगी तो वो खतरनाक इसलिए है कि वो अंततः ऊपर पहुंच जाएगा। वो अंततः मैनिपुलेट करेगा। आखिर बचोगे कैसे। आज रूस में हमने इंतजाम कर लिया कि हम अमीर और गरीब को नहीं बचने देंगे मिटा देंगे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका में एक गरीब आदमी जितनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है ना भी पहुंचे तो गरीब रह के भी जितना अमीर रहता है रूस का अमीर भी उतना अमीर नहीं। रूस का जो नोबेल प्राइज विनर है उसको भी एक प्राइवेट कार मिल जाए तो वो समझता स्वर्ग मिल जाएगा। रूस का जो जिसको हम कहें अमीर वर्ग वो अमेरिका के गरीब वर्ग से पीछे मगर एक लिहाज से तरफ क्योंकि ईर्षा के लिए मौका नहीं क्योंकि कोई अमीर नहीं। गरीब की तृप्ति इसमें नहीं है कि वो गरीब न रह जाए। उसकी तृप्ति इसमें है कि कोई अमीर न रह जाए। मगर मजा ये है कि अगर अमीर नहीं रह जाता तो गरीब की सारी गति बंद हो जाती। वो अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारता क्योंकि गति वो आगे का वर्ग करता था वो कुल्हाड़ी मारते। दूसरा मजे का मामला यह है कि वो जो बुद्धिमान है वो तो किसी न किसी रास्ते से ऊपर पहुंच जाता है। आदमी कल गरीब को लगेगा कि बुद्धि ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आदमी कल गरीब को लगेगा कि एक आदमी के पास सुंदर औरत तो दूसरे आदमी के पास कुरूप औरत क्यों होनी चाहिए। ये सवाल अगर लोकतंत्र की पूरी अंतरात्मा में हम प्रवेश करें तो वो इस बात का है कि जो एक के पास है वो सबके पास होना चाहिए। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि परिवार न रह जाए वैश्यालय हो प्राथमिक समाजवादी थे मार्क्स के पहले, उनका तो ख्याल था कि आज नहीं कल हमें स्त्री को सोशलाइज करना पड़ा, निशुलाइज करना पड़ा, क्योंकि वो बड़ा भारी झगड़ा। अगर हम आदमी के भीतर घुसे तो दो ही झगड़े, इसको वैज्ञानिक कहते हैं टेरिटोरियल और सेक्सुअल। उसकी मालिकियत होना चाहिए कुछ चीजों पर और उसकी काम प्रति होनी चाहिए। पेट और काम आदमी के दो बुनियादी उपद्रव। पेट पर तुम समानता लाते हो, कल काम पर समानता लाने के लिए, और ये सारी समानता इतने जाल पैदा कर दे और इतना उपद्रव पैदा कर दे, तब तुम्हें पता चले कि आसमान का दहशत, उसके पहले पता नहीं चलता। तो मेरी कठिनाई ये नहीं है, मेरे लिए सवाल नहीं है कि लोकतंत्र कैसे जीते, समाजवाद कैसे जीते। मेरे लिए सवाल ये है कि मनुष्य की चेतना भीड़ से कैसे मुक्त रहे, क्योंकि वही मुक्त चेतना इस भीड़ को भी सुख के रास्ते पे ले जा सकती है। तो मेरा काम तो बुनियादी रूप से पद चूजन क्यू, इसमें जो मुझे समझते हैं वो भला गलत अर्थ ले लेते हैं, लेकिन मेरा काम ही चुने हुए थोड़े से लोगों के लिए, मेरी उत्सुकता ही नहीं, मेरी उत्सुकता ही नहीं है आम में। और ये मेरी दृष्टि में, और इसके प्रति मैं बिल्कुल साफ हूं। मेरा अपना कोण ऐसा है, एक स्कूल क्लास के 30 बच्चे, लोकतंत्र की दृष्टि यह है कि क्लास में जो आखिरी बच्चा है शिक्षक को उस पर ध्यान देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक भी लगता है, तो उस पर बुद्धि कम है तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो वो विकसित होगा। लेकिन इसका दूसरा परिणाम होने वाला है कि जो क्लास में प्रथम है वो उपेक्षित रह जाए, और मेरा मानना है कि अंतिम पर कितना ही ध्यान दिया जाए ये प्रथम नहीं हो सकता, और इस प्रथम पर ध्यान दिया जाए तो ये प्रथम से भी आगे जा सकता है। अगर मेरे हाथ में शिक्षा हो तो मैं प्रथम पर ध्यान देने पर जोर दूंगा। मैं सार्वजनिक शिक्षा के पक्ष में नहीं हूं, जो शिक्षित किए जा सकते हैं उनको ही शिक्षित किया जाना चाहिए। जो शिक्षित किए जा सकते हैं उनको ही शिक्षित किया जाना चाहिए। अगर इस मुल्क में 50,000 व्यक्ति शिक्षित किए जा सकते हैं तो उनको पूर्ण रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, वो इस मुल्क को सोने से भर सकते। हम पूरे 50 करोड़ को शिक्षित करने में लगे, एक मीडिया का समाज पैदा होगा, शिक्षित होने वाला नहीं, और वो जो शिक्षित नहीं हो सकते हैं और जबरदस्ती शिक्षित किए जाते हैं वो सब तरह के उपद्रव पैदा कर रहे हैं और करेंगे। आज यूनिवर्सिटी में छोरा लेके खड़ा हो रहा है और नकल कर रहा है, ये वे लोग हैं जो शिक्षित नहीं किए जा सकते, लेकिन इनके भीतर भी आपने महत्वाकांक्षा जगाई कि जो प्रथम आता तुमको भी प्रथम आना है, तुम्हें भी गोल्ड मेडल होना चाहिए, तो उस छोरे से गोल्ड मेडल ले सकते हैं, और तो कोई उपाय नहीं, नकल से ले सकते हैं, चोरी से ले सकते हैं, वो सारी की सारी व्यवस्था को तोड़े डालते हैं, और वो जो प्रथम आ सकता था वो ये सब नहीं कर सकता, वो पिछड़ा जा रहा है, वो पिछड़ा जा रहा है, उसकी समझ से बाहर हुई जा रही सारी बात। मेरा मानना है प्रतिभा शिक्षित होनी चाहिए, सार्वजनिक शिक्षा बिल्कुल बेमानी, और जो व्यक्ति बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली नहीं हो सकता, शारीरिक रूप से प्रतिभाशाली हो तो उसकी शारीरिक शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षित सब किए जाने चाहिए, लेकिन किसी लोकतांत्रिक दृष्टि से नहीं, व्यक्ति की क्षमताओं की दृष्टि। मैं व्यक्तिवादी हूं, समाज मेरे लिए बिल्कुल मूल्यवान नहीं। अगर तुम्हारे पास करी रक्षा है जो राममूर्ति हो सके तो मैं कहता हूं फिक्र छोड़ो बुद्धि की, क्योंकि बुद्धि अगर अच्छी नहीं है तो तुम आइंस्टीन कभी नहीं होने वाले, और राममूर्ति होने से भी बच जाओगे, और आइंस्टीन भी एक मीडिया कर रह जाओगे, और मीडिया कर आदमी बड़े खतरनाक, क्योंकि महत्वाकांक्षा उनकी बारी होती और क्षमता उनकी होती नहीं, वो सब तरह के उपद्रव पैदा करते हैं, और आखिरी उपद्रव उनका यह है कि अगर हम नहीं पहुंच सकते प्रथम तो कम से कम एक बात पक्की करने की कोई भी प्रथम न पहुंच सकते, इतना पक्का हो जाए तो समाज को किस संस्कृति है। तो एक अर्थ में मैं व्यक्तिवादी हूं और दूसरे अर्थ में मैं अभिजात्य का पक्षपाती हूं। हर व्यक्ति का अभिजात्य है, उसका कुछ खास है जो विकसित होना चाहिए और मैं ही उसमें, तो चिंता छोड़ देनी चाहिए। हम उसके खाने पीने रहने का इंतजाम कर दें, ये पर्याप्त, वो शांति से जिएंगे, पर्याप्त। तो अभिजात्यवादी भी मैं, यानी मेरा मानना है कि हम कोई भी उपाय करके आइंस्टीन पैदा नहीं कर सकेंगे, चाहे कितना ही समाजवाद हो, चाहे कितना ही लोकतंत्र हो, आइंस्टीन या आइंस्टीन हो सकेगा। और अगर हमने जिद की, तो जिसकी संभावना है, क्योंकि रूस में वो फिक्र कर रहे हैं इस बात कि बुद्धिमाप करीब कैसे लाया जाए, तो बड़े मजे की बात है कि नीचे वाले का बुद्धिमाप ऊपर नहीं लाया जाता, लेकिन ऊपर वाले का नीचे लाया जाता। ये बड़े ये बड़ा मजा है। जो है उसे छीना जा सकता है, लेकिन जो नहीं है उसे पैदा नहीं किया जा सकता। अगर एक बच्चा इडियट पैदा होता है तो हम उसे जीनियस नहीं बना सकते, लेकिन जीनियस को हम एक इंजेक्शन देके इडियट बना सकते। क्योंकि ये जो जीनियस है, ये इतना डेलिकेट मामला है कि छोटा सा इंजेक्शन भी उसे नष्ट कर देते, एक लठ मार दे आइंस्टीन की खोपड़ी पर, तो कितनी बड़ी खोपड़ी है क्या करोगे। और लठ मारने वाले को कोई आइंस्टीन से बड़ी खोपड़ी नहीं चाहिए मारने के लिए, खोपड़ी नहीं चाहिए तो कोई भी मार सकता है। तो मैं तो एक, मेरा जो अपना दृष्टिकोण है वो एक ऐसे जगत का है जो अभिजात्य का जगत हो, अरिस्टोक्रेटिक। वो गरीब के भी हित में, और गरीब मेरे लिए मल्टी डायमेंशनल शब्द है। कई तरह की गरीबियां हैं, धन की गरीबी है, बुद्धि की गरीबी है, भाव की गरीबी है, नीति की गरीबी है, हजार तरह की गरीबियां। और तुम एक गरीबी मिटाओ तो दूसरी गरीबी मांग करना शुरू कर दो। हमारी तकलीफ सदा ये है कि जो मौजूद होता है हम उससे पार उठ के नहीं देख पाते। भविष्य मेरिटोक्रेसी का है, भविष्य में तो जो गुणवान है उसके हाथ में सत्ता जानी चाहिए, मेरिट के हाथ में जानी चाहिए। गरीबी कोई गुण नहीं, और मैं नहीं मानता हूं कि गरीब जो भी बातें करता वो उसके भी पक्ष में, ये बड़ी तकलीफ, उसके भी पक्ष में।
इसका क्वेश्चन भी आदर है, गरीबी हटाने के वास्ते आपके पुस्तक में कोई खास कार्यक्रम है और उसके वास्ते आप राजकारण में प्रविष्ट होना जरूरी समझते हैं, जरूरी समझना जरूरी समझते हैं, तो ऐसे कोई नेता तैयार करने के एक आश्रम स्थापने की कोई योजना है आपके पास?
बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि राजनीति की बीमारी है और हमें मनुष्य को एक दृष्टिकोण देना चाहिए जो कम से कम राजनीतिक हो, तो हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते। राजनीति रहेगी, सदा रहेगी, आवश्यक है, लेकिन राजनीति मनुष्य के चित्त पर केंद्रित नहीं हो जानी चाहिए। केंद्रित हो जाए तो बीमारी, और अभी केंद्रित, अभी ऐसा है कि बाकी सब गौण, सब कोने में है। मंदिर की जो वेदी है वो राजनीति। तो मेरी दृष्टि ये है कि हम जितना ज्यादा गैर राजनीतिक व्यक्तित्व पैदा कर सके उतना अच्छा, और गैर राजनीतिक व्यक्तित्व जितने बजनी हो सके समाज में उतना इन राजनीतिज्ञों की मूलताओं से लड़ना आसान हो। इस मुल्क ने एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग के मैं पक्ष में हूं। इस मुल्क ने साधुओं को, संत को, सन्यासी को प्रथम कोटि पर रखा, राजनेता को, राजा को, दुखी को भी पता, और अगर एक सम्राट भी होता और एक फकीर होता तो फकीर के चरणों में सम्राट को सिर रखना पड़ता। ब्राह्मण को नंबर एक रखा था, ब्राह्मण का उन दोनों में अर्थ था उन दोनों का बुद्धिमान वर्ग इंटेलिजेंसिया, क्षत्रिय को नंबर दो रखा था। शक्ति कितनी ही बड़ी हो नंबर दो होनी चाहिए बुद्धि के साथ। तो मेरे हिसाब में तो ब्राह्मण लौटना चाहिए, मेरे हिसाब में तो ब्राह्मण लौटना चाहिए। समाजवाद, लोकतंत्र, सब शूद्र को प्रथम रखने की चेष्टा है, क्षत्रिय को ही नहीं, अंतिम को। तो मैं तो इस दृष्टि में मनुष्य बहुत राजी हूं, समाज में बहुत बुद्धिमान था, और गांधी और विनोबा बचकाने हैं उसके काम, क्योंकि क्योंकि सवाल ब्राह्मण का नहीं, सवाल यह है कि हम किस तत्व को ऊपर रखते हैं। और एक बड़ी मजे की घटना इस मुल्क में घटी, और वो घटना ये थी कि जब हमने ब्राह्मणों को ऊपर रखा तो ब्राह्मण ने न धन की फिक्र की न पद की फिक्र की, क्योंकि जिसके पास बुद्धि है और एक बार बुद्धि को प्रथम स्थान उपलब्ध होता हो तो उसे न धन की फिक्र है और न पद की फिक्र। बुद्धि इतना बड़ा पद है अपने आप में, फिर उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ब्राह्मण भूखा भी रहा, भीख भी मांगी, लेकिन उसने राजनीति की और धन की और सबकी कोई चिंता नहीं। और तब इस मुल्क ने बुद्धि के अंतिम शिखर छुए, बहुत अंतिम शिखर छुए। जिस दिशा में भी इस मुल्क ने अपनी बुद्धि को लगाया वो आत्यंतिक हो गई, उस दिशा में फिर कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। और आज भी मजे की बात यह है कि दुनिया का सारा विकास ब्राह्मणों के द्वारा हो रहा है। आज भी मेरे लिए आइंस्टीन एक ब्राह्मण है और मार्क्स और फ्रायड एक ब्राह्मण। बड़े मजे की बात है कि दुनिया का सारा विकास ब्राह्मणों के हाथ से होता है, सदा हुआ और उनके हाथ से हो सकता है, क्योंकि वही नया विचार जगत को देते, नई दिशा और नई दृष्टि देते। लेकिन ताकत आज उनके हाथ में नहीं। अभी मजे की बात है, एटम बम की वजह से पश्चिम को ख्याल आया और आइंस्टीन को, ओपन हीमर को, लिनियस पालिंग को, इन सबको ख्याल उठा कि हमने तो एटम बम बनाया लेकिन चलाने का हक तो राजनीति के हाथ में चला गया। न जॉनसन के पास बुद्धि है, न निक्सन के पास बुद्धि है, और न इंदिरा के पास बुद्धि है, और न बुद्धों के पास बुद्धि है। लेकिन बुद्धि के शिखर से जो भी ताकत उपलब्ध होगी वो इनके हाथ में चली जाए। तो एक ख्याल पश्चिम में पैदा हुआ, लिनियस पालिंग ने 10,000 वैज्ञानिकों के दस्तक किए सारी दुनिया से, और उन्होंने कोशिश की कि हम एक इंटरनेशनल ताकत बनाना शुरू करें, और वो तय करे तभी उनको ताकत का उद्घोषण करें, अन्यथा वो ताकत उद्घोषित नहीं की जाए। ये ब्राह्मण की सत्ता में लौटने की चेष्टा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हम खोजेंगे और कल तुम हमारे भी नहीं सुनते। लिनियस पालिंग खड़ा है वाशिंगटन में भूखा व्हाइट हाउस के सामने और कह रहा है एटम बम का प्रयोग नहीं होना चाहिए, दो पुलिस वाले पकड़ के बंद करते। जिन लोगों ने एटम बम बनाया उनकी कोई ताकत नहीं है बनाने के बाद। और अब तो इतनी नवीन खोज चल रही है सारी दुनिया में कि अगर सब राजनीतिक के हाथ में आ गई तो आदमी का कोई भविष्य नहीं। एटम बम तो कुछ भी नहीं है, और भी नई खोजें और खतरनाक। अब तो आपके मस्तिष्क में पैदा होते से एक इलेक्ट्रोड डाला जा सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, वो तो नर्सरी में हो जाएगा। तो छोटे से ऑपरेशन से छोटी सी इलेक्ट्रोड आपके मस्तिष्क में डाल दी जाए, फिर आपको आज्ञा दी जा सकती है दिल्ली से, आप कहीं भी दुनिया में, और जो आज्ञा उसके विपरीत आप फिर नहीं चल सकते, और आपको लगेगा कि आज्ञा मेरे भीतर से आ रही है। अब ये सारी की सारी खोज ब्राह्मण की, लेकिन ये ताकत राजनीति के हाथ में चली जाने वाली है। तो मेरी दृष्टि यह है कि राजनीति को कमजोर करना है, विज्ञान को, ब्राह्मण को, धर्म को प्रतिष्ठित करना। तो मैं किसी को राजनीति में भेजने को उत्सुक नहीं हूं। मैं तो राजनीति में भी कोई बुद्धिमान आदमी दिखाई पड़े तो उसे खींच लेने को उत्सुक हूं। और हमें इस तरह के स्तंभ समाज में खड़े करने पड़ेंगे कि जो अपनी प्रतिष्ठा राजनीतिक दृष्टि को कम करे, लेकिन उसकी दृष्टि कम नहीं होती। और अभी हालत यह है कि साधु को भी प्रतिष्ठित होना हो तो मिनिस्टर की खुशामद करनी चाहिए, और अगर एक साहित्यकार को भी प्रतिष्ठित होना हो तो उसे पद्मभूषण होना चाहिए, और तो कोई उपाय नहीं। एक कवि, एक संगीतक, वो भी दिल्ली की तरफ नजर रखे हुए हैं कि कब उसको प्रतिष्ठा राष्ट्रपति से मिले, और कोई नहीं पूछता कि राष्ट्रपति के पास क्या है। न संगीत है, न साहित्य है, न बुद्धि है, न विज्ञान है, कुछ भी नहीं। लेकिन राष्ट्रपति के पास तिकमबाजी, शतरंज के खेल का हिसाब बस उतना, और उससे सब प्रतिष्ठित होंगे। राजनीति की प्रतिष्ठा और महिमा कम करनी, और उसका एक ही उपाय है कम करने कि राजनीति के मुकाबले नए आयाम खड़े हों और राजनीति से पृथक प्रतिष्ठा के स्रोत बने। तो मैं ऐसे सन्यासी जरूर पैदा करना चाहता हूं, ऐसे आश्रम भी बनाना चाहता हूं जो गरिमाओं के नए स्रोत उपलब्ध कराएं। एक संगीतक संगीत की वजह से प्रतिष्ठित हो, एक साहित्यिक साहित्य की वजह से प्रतिष्ठित हो, और राजनीति से सम्मान देना बंद किया जाए। आज नहीं कल एक हालत आनी चाहिए कि राजनीतिक भी सभी सम्मानित हो सके जब ये दूसरी प्रतिमाएं उसे सम्मान दें, अन्यथा सम्मानित ना हो सके। मगर ये सारा का सारा अभिजात दृष्टिकोण है, इसका लोकतंत्र समाजवाद से सीधा विरोध है। तो मेरी उत्सुकता नहीं है, उत्सुकता मेरी है पर दूसरी दिशाओं। भगवान भी तभी महत्वपूर्ण है जब वो उसकी बीमारी दूर करे, गरीबी दूर करे। गरीब आदमी को गरीबी दूर करवानी, भगवान तो गौण है, उससे कोई प्रयोजन नहीं। और मेरा मानना है ये भ्रांत आकांक्षा उससे गरीब बने रहने का कारण। गरीबी भगवान से दूर होने वाली नहीं है, नहीं तो कभी की दूर हो गई हो। गरीबी भगवान के रहते बड़े मजे से चल रही, राम के रहते चलती है, कृष्ण के रहते चलती है, जीसस के, बुद्ध के रहते चलती है। साफ मामला है कि गरीबी के दूर करने का उपाय कुछ और है, भगवान नहीं। तो पहली तो बात ये मैं कहना चाहता हूं कि भगवान से गरीबी दूर नहीं होगी, और जिन मुल्कों की दूर हुई है उन्होंने भगवान को जिस मात्रा में छोड़ा उस मात्रा में दूर हुई। भगवान को जितने जोर से पकड़े हुए मुल्क है उतना मुश्किल है गरीबी दूर होना, क्योंकि आकांक्षा ही गलत है। यानी मामला ऐसा है कि मैं सोच रहा हूं कि सूरज के निकलने से मेरा टीबी ठीक हो, अगर उससे कोई संबंध नहीं है तो मैं मरूंगा, और टीबी दूर करने के जो उपाय हो सकते थे वो भी नहीं खोजूंगा। गरीब आदमी को ठीक से जान लेना चाहिए कि गरीबी का कारण ना तो भगवान है, इसलिए दूर करने का कारण भी नहीं हो सकता। दूर करने का कारण वही हो सकता है जो उसको बनाने का भी कारण हो। अगर भगवान ने गरीबी बनाई हो तो भगवान गरीबी दूर कर। गरीबी आदमी की व्यवस्था है, उसके उपकरणों, उसके टेक्नोलॉजी, उसके अर्थतंत्र की बाई प्रोडक्ट। उसको अपना तंत्र बदलना पड़े, गरीबी बदलनी है तो वो आदमी की जिम्मेवारी। उसको भगवान से लेना देना कुछ भी नहीं। सामाजिक घटना गरीबी, धार्मिक घटना नहीं। क्योंकि हम हर चीज को धार्मिक घटना बना देते तो उपद्रव शुरू होता, फिर हम इलाज भी नहीं खोज पाते। मेरा मानना है कि रूस भगवान को बिल्कुल इंकार कर दिया तो भी गरीबी दूर कर सकता। भगवान से कोई लेना देना नहीं है गरीबी के होने नहीं होने का, बल्कि एक मात्रा में भगवान को ये भरोसा कि वो गरीबी दूर कर देगा, गरीबी को बनाए रखने का साधन होता है। तो मैं तो मानता हूं गरीब को जानना चाहिए कि गरीबी के आर्थिक कारण हैं, धार्मिक कारण नहीं है। आर्थिक कारण बदलेंगे तो गरीबी बदल जाएगी। दूसरी बात, मुझे कोई भगवान कहे या मुझे कोई शैतान कहे, ये कहने वाले के संबंध में कुछ खबर देता है, मेरे संबंध में कुछ नहीं। लोग हैं जो मुझे शैतान कहते हैं, उन्हें मैं शैतान दिखाई पड़ता हूं। किसी को मैं भगवान दिखाई पड़ता हूं, उसे दिखाई पड़ता हूं। मेरे लिए निष्प्रयोजन है कि मैं शैतान को, जो मुझे शैतान कहता है उसे समझाने जाऊं कि मुझे शैतान मत कहो, और मेरे समझाने से वो मानेगा। जो मुझे शैतान मानता है वो मेरे समझाने से मानेगा कि मुझे शैतान न कहे, बल्कि ये समझाना उसे और भी मुझे शैतान कहने का कारण बने कि मेरी उत्सुकता क्या है। ठीक मजे की बात ये दूसरी तरफ भी ऐसी ही है, जो मुझे भगवान कहता है ये उसका दृष्टिकोण, उसे दिखाई पड़ता हो जैसे किसी को शैतान दिखाई पड़ता है। अगर मैं उसे समझाने जाऊं तो मैं भगवान नहीं हूं तो ये उसे और भी भगवान कहने का कारण बनता है। ये बहुत मजे की बात है कि अगर आप मेरे पैर छूते हो और मैं कहूं कि नहीं नहीं मत छूए, बिल्कुल मत छूए, तो और पैर छूने का कारण बनता है। बल्कि कई बार तो मैंने अनुभव ऐसा किया कि आप पैर छू रहे हो और मैं आपका सिर हाथ से लगा दूं जो मजे से छू लूं तो शायद दोबारा आप ना छूए। आदमी के मन का काम करने का ढंग बड़ा कंट्राडिक्टरी है। तो मैंने अनुभव किया कि दो उपाय हैं, अगर मुझे कोई भगवान कहता तो एक तो उपाय ये कि मैं स्वीकार कर लूं कि मैं भगवान, जो कि मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता इसलिए कि मेरे लिए सभी कुछ भगवान, इसलिए विशेष रूप से किसी को भगवान कहने का कोई भी अर्थ नहीं। भगवान होना मेरे लिए सभी जीवन का साधारण अस्तित्व, साधारण क्वालिटी। सभी लोग भगवान, भगवान और अस्तित्व मेरे लिए पर्यायवाची। तो कोई मुझे भगवान कहे तो हां तो मैं नहीं भर सकता कि मैं भगवान, सिर्फ इतनी हां नहीं भर सकता कि इसमें कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि तो तुम भी भगवान हो। इसको मैं इंकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सभी कुछ भगवान है तो मैं अपने लिए इंकार करूं तो भी विशेषता अपने लिए खोजता हूं। मेरे लिए भगवान होना ऐसे ही जैसे आप जीवित, अगर मुझे कोई जीवित कह दे तो मैं क्या इंकार करूं और क्या हां करूं। मेरे लिए आप भी जीवित। जो कठिनाई उठती है वो प्रश्न करने वाले के मन से आती है। उसका ख्याल ऐसा है कि भगवान राम होते हैं, कृष्ण होते हैं, बुद्ध होते हैं, कोई भगवान होता है, बाकी तो कोई भगवान नहीं। मेरे लिए भगवान होना सहज अस्तित्व का गुण है, और राम अगर भगवान हो पाते तो इसीलिए कि आप भी भगवान हो सकते हैं, नहीं तो राम भी भगवान नहीं होते। आपके भीतर जो छिपा है जब आप उसे खोल लेते हैं तो आपको पता चलता है। तो मैं किसको इंकार करने जाऊं और किसको हां भरने जाऊं। हां भरने में भी अहंकार है और इंकार करने में भी अहंकार। अगर मैं हां भरूं कि हां मैं भगवान फिर सब मेहर बाबा हां भर दू कि मैं भगवान तो मैं मानता हूं इसमें अहंकार है, क्योंकि ये स्वीकार करना कि मैं भगवान हूं इसका मतलब यह हुआ कि मैं विशिष्ट हूं और लोगों से। अगर मेहर बाबा से आप जाके कहें कि आप ही भगवान नहीं सामने का जो तमोजी है पान वाला वो भी भगवान तो वो नाराज हूं। तमोली की तो बात छोड़ दें, अगर और भी कोई आदमी कहीं कह रहा है कि मैं भी अवतार हूं तो नहीं मानने को राजी होंगे, क्योंकि वो कहते हैं इस युग पे वो ही अवतार और एक युग में एक ही अवतार। अगर आप ये कहें कि राम और कृष्ण और बुद्ध ये भी सब अवतार थे तो भी उनको कठिनाई होती, तो वो कहते हैं ये सब आंशिक अवतार थे, मैं पूर्ण अवतार। हिंदू कहते हैं कृष्ण पूर्ण अवतार थे, तो मेहर बाबा कहते हैं फिर समानता हो जाती है। तो मेहर बाबा कहते हैं कि पहले मैं अवतार रूप में आया, इस बार में स्वयं भगवान रूप में आया हुआ। इसको मैं पॉजिटिव अहंकार कहता हूं, विधायक रूप से यह आदमी पागल हो गया। कृष्णमूर्ति निगेटिव है बिल्कुल, मगर वो भी अहंकार। वो कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं गुरु नहीं हूं, मैं कोई भी नहीं हूं, लेकिन इसको 40 साल से यही कह चले जा रहे, इसको भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, इसको भी कहने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं चिल्लाता हूं 40 साल तक मैं चोर नहीं हूं, मैं बेईमान, इसकी भी कोई कहने की नहीं हूं तो नहीं हूं, लेकिन ये निगेटिव अहंकार ये भी विशेषता की बात कि मैं नहीं हूं, मैं गुरु भी नहीं हूं, मैं भगवान भी नहीं हूं, अवतार भी नहीं हूं, मैं कोई भी नहीं। मेरी तकलीफ है ये दो उपाय हैं सीधे, इन दो उपायों के भी मैकेनिज्म। अगर मैं कहूं कि मैं भगवान हूं विधायक अहंकार का उपयोग करूं तो कुछ लोग हैं जो समर्पण कर सकते हैं, वो तत्काल मुझे मान लें, जो विनम्र जो अहंकारी है वो मेरे खिलाफ दुश्मन हो जाएंगे। अगर मैं कहूं कि भगवान नहीं हूं तो जो अहंकारी है वो मुझे मान लेंगे। इसलिए कृष्णमूर्ति के पास अहंकारियों के सिवा कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि अहंकारी उसी के पास जा सकता है जो कहता है मैं गुरु भी नहीं, मेरे पैर भी नहीं छूना, मुझे नमस्कार भी मत करना, मैं भगवान भी नहीं हूं। जो इतना भी कहता है कि तुम मेरे पास आते हो लेकिन मैं तुम्हें सिखाता भी नहीं हूं, जो 30 साल से सीख भी रहे हैं उनसे और इतनी भी विनम्रता नहीं कहने की कि हमने तुमसे कुछ सीखा, तो वो लोग इकट्ठे होंगे। मेहर बाबा के पास वो लोग इकट्ठे होंगे जो समर्पण कर सकते हैं, जिनको कोई सहारा चाहिए, जो इतने भयभीत हैं अपने भीतर, इतना भी अहंकार नहीं कि अपने पैर पर खड़े हो सके, वो चाहते हैं कि किसी के कंधे पर सब छोड़ दें, वो वहां इकट्ठे हो जाए। मेरी तकलीफ है ये दो विकल्प और मैं दोनों गलत मानता हूं, तो एक ही उपाय है कि मैं चुप रहूं, इस संबंध में कुछ नहीं कुछ न शक्ति बात संभव है, शक्ति बात संभव है
प्रसंग के बाद
शक्ति बात संभव है और काम ऊर्जा के द्वारा भी शक्ति बात संभव है, संभोग के द्वारा भी शक्ति बात संभव है। तंत्र की पूरी प्रक्रियाएं कि संभोग के द्वारा भी शक्ति बात संभव है, बल्कि तंत्र का तो मानना ही है कि संभोग के अतिरिक्त और तरह शक्ति बात हो ही नहीं सकता। तो जहां तक तथ्य की बात है, सैद्धांतिक तथ्य की बात है, संभोग से शक्ति बात संभव है, क्योंकि संभोग का मतलब ही है कि दो शक्तियों का मिलन। अगर इसमें श्रेष्ठ शक्ति कोई भी हो तो निकट शक्ति तरफ प्रवाहित हो जाए, ये बायो इलेक्ट्रिकल मामला है, इसमें कोई बहुत बड़ा धर्म का मामला भी नहीं है, इससे सीधा वैज्ञानिक विद्युत का मामला है, ये संभव है, इसमें कोई अड़चन नहीं। लेकिन घटना बिल्कुल छूटी, मैं तंत्र पर भी बहुत से प्रयोग करता हूं और तंत्र पर मेरी बड़ी श्रद्धा है, भारी श्रद्धा है। और मेरा तो मानना यह है कि तंत्र अकेला विज्ञान है जो भारत ने दिया है जगत को, और आज दिन कल अगर भारत की प्रतिष्ठा होगी तो वो तंत्र के कारण होगी। लेकिन भारत में जो नीतिवादी प्यूरिटन का जो जकड़ है उसकी वजह से तंत्र को बुरी तरह दबाया गया, बुरी तरह। कल्पना नहीं कर सकोगे कि अकेले राजा भोज ने 1,00,000 तांत्रिकों की हत्या की, अकेले एक आदमी कष्ट कर लिया कि भारत में एक तांत्रिक को नहीं बचने देगा। तांत्रिकों के लाखों ग्रंथ जलाए, यह हालत पैदा कर दी कि कोई आदमी अपने को तांत्रिक है ये कह नहीं सकता खुले आम, क्योंकि तांत्रिक का मतलब हो गया कि गलत। लेकिन पिछले 200 वर्षों में यूरोप में जो खोजबीन हुई है, विशेषकर फ्रायड के बाद और विलहम रेट तक जो खोजबीन हुई है, उस सब ने तंत्र को नया मार्ग दे दिया। और तंत्र की सोच वैज्ञानिक है, क्योंकि मनुष्य के भीतर जो गहरी से गहरी ऊर्जा है वो सेक्स एनर्जी है। अगर हम मनुष्य की शक्तियों का खोज करने चले तो जैसे फिजिसिस्ट पदार्थ को तोड़ के इलेक्ट्रिक पर पहुंचा है, वैसा ही तांत्रिक मनुष्य को तोड़कर सेक्स एनर्जी पर पहुंचा है। मनुष्य का सारी सारी बनावट सेक्स की है, आप पैदा हुए हैं सेक्स से, आपके मां और बाप के दो विद्युत कण सेक्स कण आपके निर्माण का सारा खेल, फिर उन्हीं दो सेक्स कणों के विस्तार से आपके सारे शरीर का विस्तार हुआ, आपके पूरे शरीर की बनावट सेक्स कणों की। जैसे पदार्थ विद्युत कणों से बना है, ऐसे जीवन काम कणों से बना है, और आपकी पूरी की पूरी ऊर्जा ठीक समझा जाए तो सेक्स एनर्जी है। तंत्र का कहना यह है कि सेक्स एनर्जी अगर नीचे की तरफ बहती हो तो काम वासना, यही ऊर्जा अगर ऊपर की तरफ बहने लगे तो कुंडली। कुंडली का कुल मतलब इतना है कि काम ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही हो, आयाम बदल गया हो। तो तंत्र ने भारी प्रयोग किए कि संभोग के क्षण में ही साधक अपनी काम ऊर्जा को ऊपर प्रवाहित कर सकता है, और काम ऊर्जा अगर ऊपर प्रवाहित हो रही हो तो हमें सिर्फ दिखाई पड़ता है कि संभोग हो रहा है, संभोग नहीं हो रहा। ये खजुराहो और पुरी और कोणार्क के सारे मंदिर अश्लील नहीं, तांत्रिक। लेकिन हमने भी हिम्मत खो दी कहने की दुनिया से कि ये तांत्रिक, हम खुद ही इतने कमजोर और डरपोक हो गए कि तंत्र की बात करनी है। तो मैं तंत्र पर मेरी प्रगाढ़ उत्सुकता है, वक्तव्य नहीं देता हूं अभी तंत्र पर, उसका कुल कारण इतना है कि जैसे जैसे लोग तैयार हो जाए वैसे ही वक्तव्य दिए जाए, अन्यथा अकारण उपद्रव होते, अकारण उपद्रव हो जाए। तो तंत्र पर मेरी श्रद्धा है, मेरे पास जो साधक होते हैं उनको मैं तंत्र की दिशा में भी प्रवाहित करता हूं, उनको तंत्र के प्रयोग भी देता हूं कि वो अपने जीवन में कर सके, उनकी काम ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो, इसके लिए भी उनको साधनाएं देता हूं। इन साधनाओं के संबंध में बहुत कुछ तो गुह रखना पड़ेगा, इसको पैरिक रखना पड़ेगा, इनकी आम चर्चा नहीं हो सकती। आम चर्चा न होने का कारण चर्चा में कोई गड़बड़ है ऐसा नहीं है, आम चर्चा न होने का कारण जो लोग मानस वो जो भीड़ है चारों तरफ उसने जो सुन समझ रखा है उससे दूसरी को कुछ नहीं समझ सकते। अमरीका जैसे विचार स्वतंत्र वाले मुल्क में विलहम रेट अमरीकन मनोवैज्ञानिक जर्मन था, अमरीका गया, उसको 3 साल पागलखाने में काटना पड़े, क्योंकि जो बातें उसने कही उनको गलत भी सिद्ध नहीं किया जा सकता और सही माना नहीं जा सकता, क्योंकि पूरी क्रिश्चियनिटी के खिलाफ उसको जबरदस्ती पागल करा दिया। ये इस सदी के गहनतम अपराधों में से है। और उस आदमी ने इतनी गहरी खोज की थी कि अगर वो प्रकट हो सकती पूरी की पूरी तो मनुष्य जाति का परम कल्याण होता। उसको 3 साल पागलखाने में रखा, पागलखाने में वो मरा। और उसके मित्रों का, उसके शिष्यों का, बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिकों का ख्याल है कि जबरदस्ती की गई। उसने एक तंत्र का एक यंत्र बनाया जो भारत में बहुत दिन तक था और उसने पहली दफा अमरीका में बनाया। उसने एक छोटा सा संदूक बनाया, व्यक्ति को संदूक में बंद कर देता और संदूक की जो दीवारें थी वो बहुत संवेदनशील तत्वों की बनाई और उस व्यक्ति को काम ऊर्जा को ऊपर ले जाने के प्रयोग करवाता था। जब ऊर्जा ऊपर जाती है तो पूरा का पूरा बांस जो है चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रीफाइड होता है। और उसको उसने हजारों प्रयोग किए। वो जब इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है तो किसी भी काम वासना से भरे व्यक्ति को उसके भीतर मिटा दो, आधा घंटे में उसकी काम वासना छीन हो जाती। किसी काम वासना से पागल हो गए व्यक्ति को उसके भीतर मिटा दो, घंटे भर में उसका पागल संसान हो जाए। लेकिन ये उसने बात बनाना शुरू किया, उसको और कोई उपाय नहीं मिल सका मुकदमा चलाने का, तो साजिश के लिए उसको मुकदमा चलाया गया कि उसने बिना लाइसेंस लिए ये बात बनाया, इसका पेटेंट नहीं करवाया। ये सब उपद्रव, इसके पेटेंट होना चाहिए ना, इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ये इसको बेच रहा है तो ये तो कम्युनिटी बाजार की होगी, जिसके सब अमेरिका का पूरा स्टैंडर्डाइजेशन और ये सब होना है, वो नहीं है। और इसमें कुछ बात बेचे, इसको मुकदमा चलाओ, उसको जिंदगी भर इसकी मुकदमेबाजी में उसको परेशान किया। ये सारी तकलीफें हैं, लोकमानस की तकलीफें हैं, लोकमानस की समझ का तल है। तो कुछ चीजें अनिवार्य रूप से गुप्त रखनी पड़ेगी। तो मेरे पास बहुत से प्रयोग चल रहे हैं जो गुप्त हैं। इन गुप्त प्रयोगों से न मालूम कितने साधु सन्यासियों को तकलीफ होगी, बिल्कुल स्वाभाविक है। न मालूम कितने राजनीतिज्ञों को तकलीफ है, स्वाभाविक है। न मालूम कितने तरह के ठेकेदारों को तकलीफ है, बिल्कुल स्वाभाविक। तो मेरे संबंध में वो बहुत सी बातें ईजाद करें, कल मुकदमा भी लाएं, कल मुझे बंदी करें, वो सब हो सकता है। कोई बहुत अड़चन का मामला नहीं, इसमें कोई अड़चन का मामला नहीं। और हमारे मुल्क में तो किसी भी व्यक्ति को अप्रतिष्ठित करना हो तो सरलतम बात यह है कि उसके चरित्र को कुछ बात नहीं कह देगा, फिर कोई खोजबीन का सवाल नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं, बात समाप्त हो गई। और क्या नहीं हो सकता, अभी मुझे खबर आई, मैं तो यहां हूं, वो 1.5 साल से अमृतसर नहीं गया हूं। अमृतसर में उन्होंने पोस्टर लगा दिए कि मैं गिरफ्तार कर लिया गया हूं क्योंकि मेरे पास गांजा, अफीम, चरस, एलएसडी, नक्सलीन, इस सब का भारी तो सारी दीवारों में पोस्टर लगा दिए। अब जो आदमी पढ़ रहा है वो पता लगाने की कहां जाएगा कि हुआ कि नहीं हुआ। वो आदमी आमतौर से मानता कि हुआ होगा नहीं तो पोस्टर कैसे लगेगा। अब ये पोस्टर लगाने वाला कौन है, इसको कौन खोजने जाए, इसको कौन पकड़े, क्या प्रयोजन, उसका क्या हल, सब क्या मुझे सुन लेना पड़ेगा। देखिए इसका बड़े मजे का मामला है। परसों ईश्वर बाबू की पत्नी ने आके कहा, उसको उसके पड़ोसन में कल तुम्हें पता है कि 10-12 महिलाओं ने उनको बहुत बुरी तरह मारा जाए, बहुत बुरी तरह पीटा और हमेशा ही सब उनको बचाया जाए क्योंकि वो महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। अब मां से मामला ये है कि अभी इन सबके लिए क्या किया जाए, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। और मेरे साथ ये सब चर्चाएं चल सकती हैं क्योंकि मैं जो प्रयोग कर रहा हूं, जो बातें कर रहा हूं, उनसे इनका तालमेल बैठ जाता है, जिससे मैं संभोग से समाधि की ओर वक्तव्य दिया। तो अगर मैं ब्रह्मचर्य के पक्ष में बोल रहा हूँ और मेरे अनैतिक संबंध नहीं है किसी से, तो भी मेरे संबंध में आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि मेरे वक्तव्य मेरे ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत तो ब्रह्मचर्य के संबंध में रहा हूँ, अगर मेरा चोरी छिपे किसी से अनैतिक संबंध भी है तो आप पता नहीं लगा सकते। लेकिन मेरे साथ तकलीफ है कि मेरा किसी संबंध भी नहीं, तो भी मैं ब्रह्मचर्य के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, तकलीफ बहुत उल्टी है। मैं बोल तो संभोग के पक्ष में रहा हूँ, तो मानना बिल्कुल पक्का ही है कि इस आदमी के संभोग के संबंध होंगे जो संभोग के पक्ष में बोल रहा है। तो कोई अगर आपसे कहे तो भरोसे की योग्य बात मालूम पड़ती है कि जो आदमी संभोग के पक्ष में बोल रहा है उससे ब्रह्मचर्य की तो आशा नहीं की जा सकती। ब्रह्मचारी से आप संभोग की आशा कर सकते, संभोग के पक्ष में बोलने वाले से ब्रह्मचर्य की कैसे आशा करें? ये सब स्वाभाविक, ये सब स्वाभाविक, ये बिल्कुल स्वाभाविक, ये सब
स्वाभाविक। By the force which exists there. In other words, when the state apparatus gets adjusted in a particular manner, it starts revolving automatically without use of any fear. Exactly in the same manner, it should be possible for man to so adjust his life that he can go about his duties and jobs by drawing upon the divine power which exists everywhere within and all around us. Is there any technique by which this can be possible?
It is not possible. Because the very object of the spiritual self is diametrically opposite to scientific objects. Science deals with mechanism. Religion deals with consciousness, not mechanism. Science is objective, religion is subjective. So if there is a table in the room, it is an object. We all can observe it. We all can observe it. But if love is in my heart, only I know about, no one can observe it. Observation is impossible. If I am silent inside, that silence I can only know. You cannot penetrate in it. It is impossible. Because it is inner, not outer. So science can make objective discoveries which can be used by all. Once electricity is known, then everyone can use it without any knowing about it. You push the button and the electricity begins to work. You need not know the technique, you need not know the philosophy, you need not know the science of electricity. No need, only mechanism. But as far as consciousness is concerned, there is no mechanism. So you cannot push a button and be silent. And if someday this happens, that you push a button and become silent, that will not be spirituality. That will not be spirituality. And that will be dangerous. That means your mechanism of the mind is being manipulated. The mechanism can be manipulated. A button is possible which can make you non-angry or angry, but then the button will be in someone else's hand. You are not the master. You cannot be master. If I can make everyone silent here, then I am the master, not you. And spirituality means mastery of oneself. So this mastery cannot be turned into a technique. It cannot be reduced to a science. It will remain an art, individual, absolutely individual. So there is no possibility, no possibility. Religion is for the individual. It cannot be mass produced. The very nature of it is contrary. Is contrary. I am here. You can know my body because my body is an object. You cannot know me. You cannot know me. You can only infer that I am here. That inference depends upon your own knowledge of your own self, because you know that you are in the body. So if the body is there alive, I must be inside the body. But this is inference, not knowledge. Knowledge of my own self is possible only for me. No one else can know me. So I cannot be made an object. That's the problem. Buddha discovered, Krishna discovered methods how to go in. But you have to use those methods. And with each individual there is a difference, because each individual is different. The mechanism is different. And when you use them and achieve something, that will remain individual. You cannot transfer it to anyone. Einstein knows something, the knowledge can be transferred to the whole humanity. Buddha knows something, the knowledge cannot be transferred. He tries to talk about it. But again, you have to go through the process individually. And this will remain always so. There is no possibility of creating a technology of religion. Adjustment is not a spirituality. Adjustment is not a spirituality. You can be forced to be adjusted mechanically. Some injections can be given to you, which will make you calm. But that calmness is through the body, is of the body, not of you, chemical. When the injection influence is over, you will be the same again. So you can be adjusted. You can be adjusted. But that is not divine. And be aware that no one adjusts anyone like that. Governments think to adjust people. Now we know that certain hormones are basic. For your anger, a certain quantity of a certain hormone is needed in the body. Anger is in consciousness. Hormones are in the body. This is a double process. But without the hormones, the anger cannot be expressed. So if we put those hormones out, you cannot be angry. But the anger will be in. No one will be able to know about it. Not even you. This is just like you pull out the bulb. Electricity will be there, but unexpressed. Put the bulb in, electricity will be manifested. But bulb is not the electricity. So your hormones just express. So your mind can be adjusted. Your body can be adjusted. If sex hormones are drawn out, then there will be no sexuality in you. Manifest. Unmanifest sexuality will be there. The religion is concerned to change that unmanifest. Hormones remain wherever they are, but the consciousness changes. एंगर हार्मोन इज इन बुद्धा बट एंगर इज नॉट. एंगर हार्मोन कैन बी पुट आउट ऑफ यू, एंगर विल नॉट बी एक्सप्रेस, बट यू विल नॉट बी ए बुद्धा. बुद्धा मीन्स एंगर हार्मोन देयर विदाउट एंगर. यू विल लुक लाइक बुद्धा, एंगर हार्मोन नॉट देयर, सो यू कैन नॉट एक्सप्रेस, बट यू विल बी ए डेड बुद्धा. Anger will not be there, but this will be just negative. In Buddha, no anger will be a positive phenomenon. In you, you will be just dead. Just dead. Exasperated bull. But that is in me, a Buddha. Technology can help to adjust people, and politicians are interested how to make people non-rebellious, non-angry, non-thinking, silent, adjusted, contented. They will help to create such adjustment, but that is dangerous. That is not really. One has to go deep alone. The working is not on the body, but on the consciousness. And it is individual.